नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अगले दो वर्षों में वामपंथी उग्रवाद का सफाया करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। गृह मंत्री आज उत्तराखंड में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में भी शामिल होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने आयोग के प्रेक्षकों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी पक्षों को समान अवसर देने का निर्देश दिया। और एशियाई खेलों में भारत ने ऐतिहासिक पदकों का सैकड़ा पूरा किया। पदक तालिका में भारत 25 स्वर्ण, 35 रजत और 40 कांस्य सहित 100 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। आज भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश में अगले दो वर्षों में वामपंथी उग्रवाद का पूरी तरह सफाया हो जाएगा। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद पर एक बैठक की अध्यक्षता की। गृहमंत्री ने सभी तरह के वामपंथी उग्रवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने का आह्वान करते हुए कहा कि नक्सलवाद मानवता के लिए अभिशाप है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 दशकों की तुलना में वर्ष 2022 में नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में हिंसक घटनाएं कम रही हैं और इनमें मौतें भी कम हुई हैं। एक रिपोर्ट।
वामपंथी उग्रवाद पर समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित सभी राज्यों के सहयोग से 2022 देश में बड़ी सफलताएं मिली हैं। श्री अमित शाह ने कहा कि 2019 से ऐसे क्षेत्रों में कमी आ रही है जहां उग्रवादी बचे हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 195 नए शिविर लगाए गए और 44 नए शिविर अभी स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हुए क्षेत्रों में ये समस्या वहां दोबारा उठ ना सके, इसके लिए निरंतर निगरानी बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार की कतई बर्दाश्त न करने की नीति के परिणाम स्वरूप 2022 में हिंसा और मौतों की संख्या में पिछले 4 दशकों में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई। गृह मंत्री ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद पर लगाम कसने के लिए प्रभावित राज्यों को उनकी वित्तीय सहायता रोकने के लिए नागरिक और पुलिस प्रशासन के संयुक्त दल बनाकर प्रयास करना होगा। समाचार कक्ष से चंद्रिका जोशी।
गृह मंत्री आज उत्तराखंड में टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल होने के लिए कल उत्तराखंड पहुंचे। श्री अमित शाह आज देहरादून में 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में भी हिस्सा लेंगे। इसमें 5G के दौर में पुलिस व्यवस्था, मादक पदार्थ, आंतरिक सुरक्षा, सोशल मीडिया की चुनौतियों और सामुदायिक स्तर पर पुलिस व्यवस्था के विषयों पर चर्चा होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बसों के ढांचे के निर्माण के लिए मानकों को मंजूरी दे दी है। ये मानक मूल उपकरण निर्माताओं और बस ढांचा बिल्डरों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। श्री गडकरी ने कहा कि ये कदम भारत में बसों की गुणवत्ता में और सुधार का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसमें यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने पर प्राथमिक ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बस दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस कदम की सख्त जरूरत है। मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन आज से 3 दिन तक सागर परिक्रमा के 9वें चरण के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। वे तमिलनाडु के रामनाथपुरम, पुदुकोट्टई, तंजावुर और नागापट्टिनम जिलों में बंदरगाहों और मछली भंडारण केंद्रों का दौरा करेंगे। वे पुदुचेरी के कराईकल मछली भंडारण केंद्र का भी दौरा करेंगे। सागर परिक्रमा के दूसरे दिन वे थारंगमबाड़ी मछली भंडारण केंद्र, पुम्पुहार और कुडलूर बंदरगाहों पर मछुआरों से बातचीत करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेक्षकों से कहा है कि वे स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए तालमेल के साथ काम करें। उन्होंने ये बात कल मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में आगामी विधानसभा के लिए तैनात किए जाने वाले प्रेक्षकों की बैठकों में कही।
श्री कुमार ने कहा कि प्रेक्षकों का काम सभी पक्षों को समान अवसर उपलब्ध कराना और चुनाव की शुचिता को बनाए रखना है। श्री राजीव कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग दिव्यांगों, 80 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों और अत्यंत कमजोर जनजातीय समूहों के लिए घर से ही मतदान करने अथवा मतदान केन्द्र तक पहुंचाने की सुविधा लगातार बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है। निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद पांडे ने इस बात पर जोर दिया कि चुनाव निष्पक्ष होना भी चाहिए और दिखना भी चाहिए। उन्होंने सभी प्रेक्षकों से सोशल मीडिया पर नजर बनाए रखने और सुधार के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए। निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल ने प्रेक्षकों से कहा कि वे सच्ची भावना के साथ और नियमानुसार कार्य करें। श्री गोयल ने कहा कि प्रेक्षक निर्वाचन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग हैं और उन्हें शिकायतों का त्वरित निपटारा करना चाहिए। समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
सिक्किम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि राज्य में भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है तथा 142 लोग लापता हैं। सिक्किम में 4 अक्टूबर को तीस्ता नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण आसपास के क्षेत्र जलमग्न हो गए थे। बाढ़ के कारण 1173 मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। अब तक 2413 लोगों को बचाया गया है जबकि 26 लोग घायल हैं। बाढ़ के कारण 13 बांध बह गए हैं। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कल शाम एक उच्चस्तरीय बैठक में स्थिति की समीक्षा की। बैठक में मौजूदा स्थिति पर चर्चा के साथ स्थिति से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मंगन जिले के लिए 25 करोड़ रुपए और गंगटोक, पेकियोंग तथा नामची जिलों के लिए 15-15 करोड़ रुपए के राहत पैकेज आवंटित किए जाएंगे। उधर केंद्र ने बाढ़ग्रस्त सिक्किम के लिए आपदा सहायता के रूप में 45 करोड़ रुपए जारी किए जाने को मंजूरी दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नुकसान के आकलन के लिए एक दल भी गठित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अक्टूबर को नई दिल्ली में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का उद्घाटन करेंगे। दो दिवसीय P20 शिखर सम्मेलन द्वारका में नवनिर्मित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि में आयोजित किया जाएगा। G20 के अंतर्गत P20 सदस्य देशों के संसदीय अध्यक्षों का एक समूह है और इसका उद्देश्य वैश्विक शासन में संसदीय प्रणाली के आयाम सामने रखना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल नई दिल्ली में बताया कि सम्मेलन में 4 सत्र होंगे। उद्घाटन सत्र का विषय लोकतंत्र की ताकत रहेगा।
इस सम्मेलन में G20 देशों की संसदें और उसके आमंत्रित देशों की संसदें और उसके अलावा अफ्रीकन पैन इंडिया की संसद के वर्तमान पीठासीन अधिकारी इस सम्मेलन में आएंगे। ये सम्मेलन में करीबन 25 पीठासीन अधिकारी, 10 वाइस प्रेसिडेंट और 50 से ज्यादा सांसद इस P20 सम्मेलन में आएंगे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को न्यायसंगत और बाधाएं सहने में सक्षम कृषि खाद्य प्रणाली पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगी। ये सम्मेलन 12 अक्टूबर तक चलेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर परामर्श समूह जेंडर प्लेटफॉर्म इस सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना कल 8 अक्टूबर को अपनी 91वीं वर्षगांठ मनाएगी। प्रयागराज में वायुसेना ने कल एक फुल ड्रेस रिहर्सल की। परेड केंद्रीय वायु कमान मुख्यालय बमरौली में आयोजित की गई और संगम क्षेत्र में आयुध डिपो किले के आसपास एयर शो का आयोजन किया गया। रिहर्सल के दौरान 8000 फीट की ऊंचाई से A-32 विमान से 10 पैराजंपर्स उतरे। जम्मू कश्मीर में वायुसेना के एयर कमोडोर सागर सिंह रावत ने कहा है कि वायुसेना किसी भी आपदा और चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि जम्मू में पाकिस्तान की ओर से आने वाले ड्रोन के खतरों से निपटने के लिए हर संभव उपाय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वायुसेना के अधिकतर निगरानी अभियान सफल रहे हैं और वायुसेना चौकसी बनाए रखने में पूरी तरह से सक्षम है। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने युवाओं से अमृतकाल के परिवर्तन निर्माता बनने का आह्वान किया है। कल भोपाल में एक निजी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल से लेकर अंतरिक्ष और विज्ञान से लेकर स्टार्टअप के क्षेत्र तक में सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के माध्यम से अभूतपूर्व प्रगति की है। एशियाई खेलों में भारत ने 100 पदक प्राप्त करने के लक्ष्य को शानदार तरीके से हासिल कर लिया है। महिला कबड्डी के फाइनल में भारत ने चीनी ताइपे को हराकर देश के लिए 100वें पदक पर कब्जा करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। अन्य एशियाई खेल खबरों के साथ हैं खेल डेस्क से निखिल कुमार।
चीन के हांगचोउ में हो रहे एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। महिला कंपाउंड तीरंदाजी में ज्योति सुरेखा वेन्नम ने आज सुबह सुबह स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। उन्होंने एशियाई खेलों का रिकॉर्ड बनाते हुए फाइनल मैच में दक्षिण कोरिया की सो सी को 149-145 के अंतर से पराजित किया। इसके बाद तीरंदाजी में ही पुरुष कंपाउंड के फाइनल मैच में अभिषेक वर्मा ने स्वर्ण पदक और ओजस देवताले ने रजत पदक पर कब्जा किया। कंपाउंड आर्चरी में भारत ने सभी प्रतियोगिताएं जीती हैं। कंपाउंड तीरंदाजी में ही अदिति स्वामी ने सिंगल्स प्रतियोगिता का कांस्य पदक हासिल किया है। खेलों के 14वें दिन होने वाली खेल स्पर्धाओं के बारे में हम बात करें तो कुश्ती के मुकाबले भी शुरू हो चुके हैं। पुरुषों की फ्री स्टाइल के लिए 74 किलोग्राम भार वर्ग में यश, 86 किलोग्राम में दीपक पुनिया, 97 किलोग्राम में विक्की और 125 किलोग्राम भार वर्ग के लिए सुमित रिंग में उतर रहे हैं। एक और दिलचस्प मुकाबला सुबह 11:30 बजे से देखने को मिलेगा, जब पुरुष क्रिकेट के फाइनल में भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। कबड्डी के फाइनल में आज दिन में 12:30 बजे भारतीय पुरुष टीम ईरान का मुकाबला करेगी। लगभग उसी समय बैडमिंटन के पुरुष डबल्स फाइनल में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी की जोड़ी कोर्ट में होगी। महिला हॉकी में आज दोपहर 1:30 बजे से कांस्य पदक के लिए प्ले ऑफ मैच होगा, जिसमें भारत और जापान की टीमें अपना दमखम दिखाएंगी। सॉफ्ट टेनिस के बारे में श्रोताओं आपको बता दें कि पुरुष सिंगल्स में अनिकेत पटेल अपनी चुनौती पेश करेंगे। वैसे एशियाई खेलों में भारत के लिए कल का दिन शानदार रहा और भारतीय सुरमाओं ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 6 कांस्य सहित कुल 9 पदक जीते थे। पुरुष हॉकी में भारत ने जापान को 5-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता और पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी कर लिया। तीरंदाजी में कल पुरुषों की रिकर्व टीम स्पर्धा में भारत को रजत पदक मिला था। फाइनल में अतानुदास, धीरज बोम्बा देवड़ा और तुषार प्रभाकर शेल्के की टीम को कोरिया से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं पुरुषों की ब्रिज टीम स्पर्धा में भारत को रजत पदक मिला है। तीरंदाजी में महिला रिकर्व टीम स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक जीता। बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स में एच एस प्रणॉय को कांस्य पदक मिला। फिलहाल एशियाई खेल खबरों में इतना ही।
पदक तालिका में भारत 25 स्वर्ण, 35 रजत और 40 कांस्य सहित कुल 100 पदक जीतकर चौथे स्थान पर है। एशियाई खेलों में भारत का अब तक का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
धन्यवाद विशाल। 2 साल में नक्सलवाद का होगा पूरी तरह सफाया, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान राष्ट्रीय सहारा के मुख पृष्ठ पर है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा बैठक में गृहमंत्री ने नक्सल मुक्त क्षेत्रों में लगातार निगरानी की आवश्यकता बताई ताकि ये दोबारा न पनप सके। 5 राज्यों में चुनाव से पहले सरकारों की लोक लुभावन योजना पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है फ्री बीच पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केंद्र और चुनाव आयोग से मुफ्त की सौगातों पर 4 हफ्ते में जवाब मांगा। हिन्दुस्तान के शब्द हैं सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त की रेवड़ियों पर मांगा जवाब। समाचार पोर्टल न्यूज क्लिक के खिलाफ प्राथमिकी में दिल्ली पुलिस के आरोप को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने दिया है। भारत में असंतोष पैदा करने के इरादे से चीन से बड़ी मात्रा में धन आया। बिहार में जाति गणना पर रोक से सुप्रीम कोर्ट के इंकार को अमर उजाला ने प्रमुखता दी है। शीर्ष अदालत ने कहा किसी भी राज्य को नीतिगत निर्णय लेने से नहीं रोक सकते। अब कॉन्ट्रैक्ट की नौकरियों में भी मिलेगा आरक्षण, हरिभूमि ने इसे देते हुए लिखा है। केंद्र सरकार ने आरक्षण की मांग वाली एक रिट याचिका का जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सरकारी विभागों में 45 दिन या इससे अधिक की कॉन्ट्रैक्ट नौकरी में एसटी, एससी और ओबीसी को दिया जाएगा आरक्षण। जेल में कैद नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा भी अखबारों की सुर्खी बनी है।
और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज नई दिल्ली में वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। गृहमंत्री आज उत्तराखंड में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में भी शामिल होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने आयोग के प्रेक्षकों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी पक्षों को समान अवसर देने का निर्देश दिया। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने मंगन जिले के लिए 25 करोड़ रुपए और गंगटोक, पाकियोंग और नामची जिलों के लिए 15-15 करोड़ रुपए का राहत पैकेज आवंटित किया। और एशियाई खेलों के अंतिम दिन आज भारत के पदकों की संख्या 100 पर पहुंची। भारत ने आज 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।